ओम शांति। हम सभी आत्माएं परम धाम से ये संसार में क्यों आए? वहां तो शांति धाम में शांति में आराम से बाबा के साथ रहते थे। बहुत आत्माओं की ही इच्छा ना सदा के लिए मुक्ति मिल जाए, लेकिन हम मुक्ति धाम से ये संसार में क्यों आए? बोलो बोलो, अभिनय करने, अच्छा पाठ बजाने। हम सभी ये संसार में आए हैं आनंद का अनुभव करने। शांति धाम में सिर्फ शांति ही अनुभूति होगी, लेकिन आत्मा में जो अनादि गुण है, सुख है, प्रेम है, शक्ति है, आनंद है, ये सब वहां अनुभूति नहीं होगी। जैसे कोई सो जाता है तो शांति अनुभूति होती है उसको, तो शांति धाम में सिर्फ शांति अनुभूति होती है। ये संसार में आए हम सभी सुख, आनंद, खुशी, प्रेम, आत्मा के अंदर जो सारी गुण है वो सबको अनुभव करने, है ना? नहीं तो मुख्यतः आनंद का अनुभव करने के लिए। जीवन में आनंद अर्थात, आनंद अर्थात एक्सट्रीम हैप्पीनेस, अति खुशी, सभी चाहते हैं ना जीवन में सदा खुश रहो, कौन नहीं चाहता है? अति खुशी कैसे संभव है, कैसे मिलता है, कैसे मिलेगा? वास्तव में परमात्मा को आनंद का सागर कहा जाता है। वो हमें सदा जीवन में आनंदित कैसे रहें वो हमें सिखाते हैं। संसार में जिनको पता नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान जिसको नहीं है, टेम्पररी आनंद अनुभव करने के लिए अनेक विधियां अपनाते हैं। जैसे लौकिक में लोग क्या करते हैं, लौकिक में सभी देखना आनंद के लिए कहीं साइट सीइंग में जाएंगे, कोई वाटर पार्क में जाएंगे, कोई हिल स्टेशन में जाएगा, कोई कहां जाएगा, टेम्पररीली खुशी मिलती है, आनंद अनुभव करते भी हैं, लेकिन जब चाहे आनंद अनुभव करना है तो लोग फिर नशा करते हैं, है ना? नहीं, जब कोई नशा करता है उसको एकदम बहुत मजा आता है, आनंद आता है, तभी तो नशा लोग छोड़ नहीं पाते हैं। तो नशा से आनंद अनुभव होता है, इसलिए दुनिया में सभी नशा चाहते हैं। अनेक प्रकार के नशा है, खाली तंबाकू सिगरेट शराब की बात नहीं है। किसी को धन कमाने का नशा है, किसी को कुर्सी का नशा है, जैसे आज बाबा ने क्या कहा, किसी को कुर्सी का नशा रहता है, पोजीशन, पोस्ट पोजीशन का नशा रहता है। अनेक प्रकार के नशा लोगों में है, परंतु जीवन में कोई भी कार्य हम करते हैं अगर नशे से करते हैं तो आनंद आता है। दुनिया में अनेक प्रकार के जो नशीली चीजें हैं वो तो वास्तव में हानिकारक है, और दुनिया में जो विधि अपनाते हैं उसमें नुकसान भी हो सकता है, परंतु भगवान हमें जो विधि सिखाते हैं, क्योंकि वो हमारे भाग्य विधाता हैं, विधि विधाता है, वरदाता हैं, कहते हैं ना भगवान को दाता वरदाता, दाता विधाता वरदाता, वो हमें क्या देते हैं, भगवान हमें क्या देते हैं? भगवान हमें ज्ञान देते हैं, प्यार देते हैं, शक्ति देते हैं, है ना? नहीं तो अनेक बहुत कुछ प्राप्तियां होती है बाबा से, तो बाबा को दाता कहा जाता है। और विधाता वो विधि बताते हैं कैसे पुरुषार्थ करें जीवन में, ताकि सदा आनंदित रहें, सदा प्रफुल्लित रहें, एकदम खुशनुमा जीवन हो जाए। और साथ साथ भाग्य विधाता, हमारा भाग्य भी कैसे श्रेष्ठ हो, बाबा हमें सिखाते हैं, हमारे भाग्य बनाते हैं, भाग्य बनाने की विधि भी बताते हैं, और हमें वरदान देते हैं अर्थात शक्ति देते हैं। जो हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है वो शक्ति हमें दे देता है कि हम कर सकें। तो भगवान ही हमें आनंद देते हैं, सदा आनंदित रहने की विधि सिखाते हैं। क्या विधि होगी, क्या विधि होगी? भगवान से क्या मिलता है, भगवान से क्या प्राप्ति होती है, जब अच्छी तरह से विचार करेंगे आपको समझ में आएगा। देखिए, प्राप्ति से खुशी होती है, कुछ भी किसी से प्राप्ति होती है तो हमें खुशी होती है, लेकिन एक्सट्रीम हैप्पीनेस, अति खुशी, ब्लिस जिसको कहते हैं, आनंद ही आनंद, वो कैसे अनुभव होगा? उसके लिए विधि बाबा बताते हैं। बच्चे, बाबा से क्या मिलता है, मैं पहला प्रश्न पूछा कि भगवान हमें क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं, ठीक ही बात है, और गुण देते हैं, अच्छी बात है, शक्तियां देते हैं, है ना? नहीं, ज्ञान, गुण, शक्तियां, प्रेम, और क्या मिलता है भगवान से? भगवान से हमें वरदान मिलता है, बाबा हमें वरदान देते हैं। बाबा और क्या देते हैं? बाबा हमें सम्मान देते हैं, है ना? नहीं, सम्मान देते हैं। जो भिन्न भिन्न सम्मान बाबा हमें सिखाते हैं, उससे क्या प्राप्ति होती है? सम्मान में रहने से क्या प्राप्ति होती है? सम्मान किसे कहा जाता है? सम्मान अर्थात जो बाबा के गुण है, जो बाबा की विशेषताएं हैं, उसको जीवन में स्वयं अनुभव करना और उस खुमारी में रहना, उसको कहते हैं सम्मान। जैसे बाबा विश्व कल्याणकारी हैं, खुद को भी हम अगर समझें मैं भी मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं, वो हमारा सम्मान है। जैसे बाबा शांति का सागर है, खुद को सोचे हम भी, मैं भी एक शांत स्वरूपात्मा हूं। तो बाबा हमें भिन्न भिन्न जो सम्मान देते हैं, क्योंकि जैसे सम्मान में रहते हैं उसी अनुसार नशा चढ़ता है, सम्मान से नशा चढ़ता है। इसलिए भक्ति में शायद शिव जी को नशा दिखाते हैं ना, नशा करते हुए दिखाते हैं। उनके त्रिशूल में एक चिलम लटका हुआ, एक लाल कपड़ा लटका हुआ देखे होंगे। शिव जी गांजा पीते हैं, शंकर जी को दिखाते हैं वास्तव में, लेकिन शिव और शंकर को तो भक्ति में मिला दिया है ना, तो शिव जी खुद नशा करते हैं ऐसे बताते हैं। इसलिए शिवरात्रि पर देखना भगत लोग क्या करते हैं, खूब भंग पीते हैं, गांजा पीते हैं, नशीली चीजें सेवन करते हैं, नशे में रहते हैं। परंतु भक्ति में समझ कम होने के कारण उसको स्थूल रूप में दिखा दिया। भगवान हमें ऐसी चीजें सिखाएंगे क्या जिससे हमारा नुकसान होगा? स्थूल नशे में नुकसान है, इसलिए तो डॉक्टर्स भी आपको मना करते हैं ये सब चीजें टच भी नहीं करना। तो भगवान फिर कैसे हमको ऐसे नशीली चीजों का सेवन करने के लिए सिखाएंगे? वास्तव में भगवान हमें सम्मान का नशा देते हैं, ज्ञान का नशा हमारे अंदर चढ़ाते हैं, स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन कराते हैं। दुनिया में जितने भी नशा है वो सब नुकसानकारक है, लेकिन एक जो हमको बाबा में नशा चढ़ाते हैं, जो नारायणी नशा, आध्यात्मिक नशा, स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन, उसमें फायदा ही फायदा है। सिर्फ एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए, 21 जन्म के लिए तो सुनिश्चित है, उसके आगे भी रहता है। तो बाबा हमें नशा चढ़ाते हैं, और नशा जिसके जीवन में चढ़ जाता है वो सदैव आनंदित रह सकता है, सदैव प्रफुल्लित रह सकता है, सदैव खुश में रह सकता है। जैसे देखना दुनिया में भी लौकिक नशा जिसको चढ़ा हुआ है, अब देखना उसका हाव भाव कैसा होता है, कैसा एकदम होगा, बिल्कुल एकदम गरीब, लेकिन सोचेगा मैं एकदम करोड़पति हूं, है ना? नहीं, लेकिन एक होता है मिथ्या ज्ञान, जो हम नहीं है ऐसा सोचना। जैसे कोई व्यक्ति एकदम भिखारी है और सोचता है मैं तो अभी राजमहल में सोया हुआ हूं, मैं एक बहुत बड़ा अमीर आदमी हूं, वो उसकी अज्ञानता है। और कोई बहुत बड़ा व्यक्ति भी खुद को बहुत हीन समझना, वो भी अज्ञानता है, दोनों अज्ञानता है। तो बोथ इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दोनों ही वास्तव में अज्ञानता है, इग्नोरेंस है। हम जो हैं जैसे हैं ऐसा ही तो सोचना होता है, सोचना चाहिए भी। आज तक भक्ति में हम क्या करते थे, भक्ति में स्वयं को बहुत हीन समझते थे, भगवान को तो बड़ी प्रार्थना करते थे, उनकी बहुत महिमा करते थे, हे प्रभु आप तो विश्व कल्याणकारी हो, दुखहर्ता सुखकर्ता हो, आप सागर हो, महान हो, लेकिन खुद को मैं अधम हूं, खल हूं, कामी हूं, कपटी हूं, पापी हूं, क्या क्या हमको खुद को टाइटल दे दिया हम, ये वास्तव में हम अपना स्वमान नहीं है, हमारी अज्ञानता है। भगवान के सामने हम जैसे हैं, जैसे एक करोड़पति का बेटा अगर खुद को भिखारी समझेगा उसकी अज्ञानता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसा बाप ऐसे बच्चे होना चाहिए, तो उसको स्वमान कहा जाता है। तो बाबा हमें स्वमान दिलाते हैं, तो जब हम स्वमान में रहते हैं हमें नशा चढ़ता है, खुशी होती है, जीवन में एकदम मालामाल अनुभव करते हैं। तो हर एक व्यक्ति जीवन में नशा चाहता है, लेकिन उनको ज्ञान ना होने के कारण वो स्थूल नशा करता है, अल्पकालीन नशा उसको चढ़ता है, लेकिन परमात्मा हमें जो विधि बताते हैं जिसमें अविनाशी नशा चढ़ता है, जीवन एकदम सदा के लिए एकदम आनंदित प्रफुल्लित हो जाता है। तो आज की मुरली हम सभी को याद है ना, बाबा ने क्या आज स्वमान दिया हम सभी को, बाबा ने एक सुंदर स्वमान दिया, बच्चे तुम कौन हो, भूल गए हो कौन हो, तुम विधि विधाता हो, सिद्धि प्रदाता हो। हम संसार के नियामक हैं, जैसे आज भी देखिए जो मंत्री हैं, एमएलएज हैं, विधानसभा होते हैं, लोकसभा होते हैं, जहां वो विधि बनाते हैं देश के लिए, जिसके आधार से सबको चलाना होता है, तो ये विश्व नाटक में सबसे श्रेष्ठ पार्ट तो हमारा है। हम ये संसार की विधि विधान हम बनाते हैं, स्वयं बाबा हमें, स्वयं बाबा भी विधि विधाता है, लेकिन हम बच्चों को भी साथ साथ विधि विधाता बनाते हैं। और उस सम्मान में रहने के लिए आज बाबा ने विशेष कहा है, और उस सम्मान के नशे में रहने के लिए बाबा ने कहा है, क्योंकि एक होता है ईश्वरीय ज्ञान को जानना, जानने से खुशी होती है, जैसे कोई बात आपको पता नहीं है, किसी ने आपको समझा दे, अच्छा ऐसी बात है, ओहो रे रे, ऐसा मजा आता है, खुशी होती है ना। नहीं, अगर आपको कोई समझ नहीं थी लेकिन आप समझ गए तो आपको बहुत खुशी होती है। इसी प्रकार जब हम भक्ति काल में हमको ज्ञान था नहीं, हम जो पूर्वजों से सुना, माता पिता से सुना, वही करते आए, लेकिन कभी मन में सवाल ही नहीं उठाए कि ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन अभी बाबा जब उसका आध्यात्मिक रहस्य को सुनाते हैं, समझाते हैं, हम समझ आ जाती है, अच्छा ऐसा करना चाहिए, तो कितनी खुशी होती है। जो ज्ञान की गुह्य बातें जब समझ में आ जाता है, इतनी खुशी होती है, बात मत पूछिए। मैं मेरा जीवन का अनुभव सुना देता हूं। मैं जब एकदम शुरू शुरू में जब ज्ञान में आया, मैं शिव और शिवरात्रि जब किताब पढ़ा, उस दिन मैं सारी रात और सारा दिन नहीं सोया होगा, और खाया नहीं पिया नहीं, खाली नाचता रहा, खाली नाचता रहा। जैसे किसी को नशा चढ़ जाता है तो वो सारा नशे में नाच लेता है, उसको नाचना आता भी नहीं आता भी तो भी नाच लेता है, कोई भांगड़ा कर लेता है तो कोई और क्या कर लेता है। तो इसी प्रकार मैं उस दिन मुझे कोई अगर खिड़की से कहीं से देखा होगा तो सोचा होगा ये तो पूरा पागल हो गया है, क्योंकि इतनी गुह्या बातें उस शिव और शिवरात्रि किताब पढ़कर, उसमें परमात्मा शिव ही हैं, वो सर्वेश्वर हैं, सभी का ईश्वर है। दुनिया में सबसे बड़ा भगवान को मानते हैं ना, तो शिव जी सबसे बड़ा कैसे हैं, उसमें हमारे जगदीश भाई जी बहुत सुंदर रीति से प्रूव किए हैं। शिव जी राम का भी ईश्वर, देखो कोई राम को भगवान मानते हैं लेकिन राम जी भी शिव जी को पूजा करते, तो शिव जी राम से बड़ा हो गए ना। इसी प्रकार कृष्ण जी भी पूजा करते हुए भक्ति में दिखाते हैं, ऐसे तो राम जी कृष्ण जी पूजा नहीं करेंगे लेकिन भक्ति में दिखाते हैं शिव जी की पूजा करते हुए, अर्थात उनसे भी बड़ा शिव जी है। और शिव जी ब्रह्मा के भी ईश्वर हैं, ब्रह्मेश्वर, विष्णु जी के ईश्वर, विश्वम्भरेश्वर, शंकर जी के ईश्वर, शंकरेश्वर, त्रयंबकेश्वर, तीनों का ईश्वर त्रयंबकेश्वर, देवताओं के ईश्वर देवेश्वर, देवता असुर दोनों के ईश्वर देवासुर, ईश्वर नारीश्वर, बूढ़ेश्वर, बालेश्वर, विश्वेश्वर, सभी का ईश्वर सर्वेश्वर। तो अभी बताओ, तो उससे बड़ा कोई हो सकता है? तो मैं एकदम खुशी से जंप लगा के एकदम नाच नाच उठता था। तो जो इंटॉक्सिकेशन शुरू शुरू में ज्ञान की सारी बातें उनको समझने के बाद, जब समुद्र मंथन की बात कहो या जो भिन्न भिन्न राज है भक्ति में, हम क्या क्यों करते थे कुछ पता नहीं था, लेकिन जब उसका आध्यात्मिक अर्थ को समझते हैं, जैसे अभी गणपति का खूब जोर शोर चारों तरफ लोग पूजा कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी पूछो गणपति वास्तव में कौन है, कब थे, कब होके गए हैं, किसी को कुछ पता नहीं, ऐसा स्वरूप क्यों है। शास्त्रों में उन्हें कथा कहानी वर्णन है, लेकिन वो कोई ऐतिहासिक सत्य जैसा तो लगता नहीं है, वो काल्पनिक जैसा लगता है। तो जब इसका आध्यात्मिक अर्थ को हम समझ जाते हैं, हमें नशा चढ़ जाता है। ज्ञान सुनने से, समझने से, जानने से खुशी होती है, लेकिन जब उसको जीवन में मानते हैं तो उससे क्या होगा, उससे नशा चढ़ेगा। और जब उसको जीवन में पालन करके चलते हैं तो शक्ति अनुभूति होती है। तो बाबा हम सभी को मायाजीत बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने आए हैं, तो इसलिए ज्ञान को सुनाते हैं। सिर्फ सुनो नहीं, समझो नहीं, उसको जीवन में प्रैक्टिकली मान के चलो तो जीवन में प्राप्ति होगी, बाबा कहते हैं। तो इसलिए आज बाबा ने जो कहा कि आप सभी विधि विधाता हो, भाग्य विधाता हो, आप साधारण नहीं हो। आप जो भी विधि विधान, जो भी सिद्धांत बनाते हो, उसका प्रारब्ध तो आप ही पाते हो। 21 जन्म आपको उसका सुख मिलेगा, उसके प्रारब्ध आपको मिलेगा ही, लेकिन भक्ति काल में द्वापर युग से फिर आपके भगत भी उस सिद्धांत को जीवन में अपनाते हुए यथा भक्ति तथा शक्ति उनको भी प्राप्ति होगी। बाबा कहते हैं आप सभी विधि बनाते हो, ज्ञान के सिद्धांतों को जीवन की वो विधि बनाते हो, पुरुषार्थ की विधि खुद भी पालन करते हो, दूसरों को भी बताते हो, जिससे आप खुद भी उसकी प्राप्ति करते हो, दूसरे जो भी उसको अनुकरण करता है, फॉलो करता है, उसको भी प्राप्ति होती है ना। नहीं, जैसे आज बाबा ने दो विशेष मूल सिद्धांत ज्ञान का बाबा ने कहा, देखो आपके सिद्धांत है कि ईश्वर एक है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, और वो एक है, वो परमात्मा है, देवात्मा महात्मा अनेक हो सकते हैं, धर्मात्मा अनेक हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा एक है, ये हमारा सिद्धांत है। तो इसी आधार से एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक विश्व एक हो जाता है। हम 21 जन्म तक कोई द्वैत होगा ही नहीं, अद्वैत राज्य अधिकारी हम बनेंगे, कोई वहां माया नहीं, विघ्न नहीं, कुछ नहीं, सभी का जीवन सुखमय जीवन, हम खुद उसके प्रारब्ध पाते हैं। लेकिन द्वापर युग से भी जब धर्मात्माएं अवतरित होते हैं, वो भी उस मान्यता को दूसरों को जन जन तक सुनाते हैं, गॉड इज वन, सबका मालिक एक, वही सिद्धांत को भक्ति में भी देखिए। सबसे पहली भक्ति तो हम सोमनाथ मंदिर बनाते हैं, जिसमें एक शिव बाबा का ही अव्यभिचारी भक्ति हम करते हैं, बाद में फिर व्यभिचारी भक्ति हो गई, अनेकों की पूजा की, बाद में अलग भक्ति अभी बाबा कहते तमो प्रदान हो गई है अभी, इसलिए प्राप्ति भी कुछ नहीं। लेकिन जब एक की भक्ति करते थे उस समय भी हम सिद्धि स्वरूप, सिद्धि प्राप्ति होती थी जीवन में, सुख शांति सब, जो भगवान की महिमा करते हैं, जो सच्चे भगत है दिल से करने वाले, उनको अनुभव होता था जब भक्ति एकदम सत्वप्रधान थी। तो आधा कल्प हम उसका प्रारब्ध हो गए, लेकिन फिर भक्ति में भी नंबरवार सभी को उसका भी सिद्धि प्राप्त हुई। इसी प्रकार बाबा ने दूसरा उदाहरण बताया, कौन सा, कि आप सभी ने पवित्रता को अपने जीवन का सिद्धांत बनाया हो, है ना। नहीं, जिसके आधार से 21 जन्म देव पद के अधिकारी होते हो, खुद देवता बनते हो, संपूर्ण पवित्र जीवन का आनंद लेते हो, लेकिन द्वापर युग से भी जो सच्चे भगत हैं भक्ति के समय पवित्रता को जीवन में अपनाते हैं, आज तक भी आप सभी अनुभव किए कि नहीं बताऊं। मैं बचपन में देखा हूं, जो समर वेकेशन में उन दिनों में ना तो टीवी थे ना तो कुछ ये सब था, तो लोग रामलीला करते थे छोटे छोटे गांव में, शहर में, हर गांव में शहर में रामलीला होता था, रात को खा पी के सब रामलीला करेंगे। अब जब रामलीला में जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो अभिनय करते हैं, वो सभी खास वो एक दो महीना तक घर में कोई नहीं रहते थे, सब मंदिर में जाके रहते थे, मंदिर में जाके सोते थे, एक टाइम भोजन करते थे, एकदम शुद्ध भोजन, मंदिर में पकाया हुआ भोजन प्रसाद के रूप में, और ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके ही रामायण में चाहे राम बने, लक्ष्मण बने, हनुमान बने, जो भी बने, जीवन में पवित्रता को अपना कर ही वो, चाहे लौकिक रूप में वो अभिनय करते थे लेकिन उसको अपना देते। तो सच्चे भगत जो हैं वो पवित्रता को जीवन में मान्यता देते। और बाबा कहते हैं तुम सत्ययुग त्रेता में तुम्हारा पवित्रता का ताज कितना सुंदर, रत्न जड़ित स्वर्णिम ताज के चारों तरफ एक सुंदर पवित्रता का प्रभाव मंडल दिखाते हैं, और भक्ति में भी ऐसा मूर्ति, ऐसा चित्र बनाकर आपकी पूजा होती है। कितनी विधि पूर्वक, कितनी पवित्रता को मान्यता देकर पूजा करते हैं। अभी अंत तक भी पवित्रता की मान्यता है। जो भी साधु संन्यासी, भले उनके पास सत्व प्रधान पवित्रता नहीं है और रजो प्रधान पवित्रता है, तो भी उसकी मान्यता साधारण मनुष्य देते हैं। आज भी उनको चरण स्पर्श करते हैं, कितनी महान दृष्टिकोण से देखते हैं। इसलिए बाबा ने आज सभी को, हम सभी को एक होमवर्क दिया था, याद है? बाबा ने कहा ऐसे आपके ज्ञान के सिद्धांत को मनन करो, चिंतन करो। कौन से सिद्धांत? बाबा ने होमवर्क दिया था आप सभी ने, क्या होगा ना, ये सभी सोचे हमारे ज्ञान के मूल सिद्धांत क्या है। मैं आपको एक दो बता देता हूं, फिर आप चिंतन करना। जैसे हमारे ज्ञान का मूल सिद्धांत है, जैसे पवित्रता, ईश्वर एक है, जैसे बाबा ने दो उदाहरण दिया, ऐसे हमारा मूल सिद्धांत है प्रातः जागरण, अमृत वेले उठना। जो अमृत वेले उठ के भगवान को याद नहीं करते उसको ब्राह्मण कहा ही नहीं जाएगा। यह हमारे जीवन की मुख्य धारणा है, सिद्धांत है। तो इसलिए इसके प्रारब्ध भी देखिए, देवताएं कोई 8 बजे 9 बजे उठने वाले नहीं होंगे। कई लोग मजाक में कहते हैं कि सूर्यवंशी हैं तो सूर्य उदय होने के बाद उठते होंगे। आजकल जो सूर्य उदय होने के बाद उठते हैं ना, वो अपने को सूर्यवंशी कहते हैं। नहीं, देवताएं भी बहुत, देखो आज भी मंदिरों में भक्ति करते हैं तो जो सच्चे भगत होते हैं एकदम प्रातः समय जाके देवताओं की पूजा करते हैं। मुझे याद है मैं एक शहर में रहता था मधुबन आने से पहले, वहां जहां रहता था उसके बहुत नजदीक एक शिवालय था, तो वहां आप घड़ी मैच कर सकते हो, एग्जैक्टली चार बजे सालों साल तक सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, घंटी बजती थी। जो भगत हैं, जो पुजारी हैं, एग्जैक्टली 4 बजे घंटी बजाता था। जो सच्चे भगत हैं वो प्रातः जागरण करके भक्ति करना, ये द्वापर युग से ही हम उसका यादगार देख रहे हैं। लेकिन देवताएं भी उससे पहले उठते होंगे ना, तो ही तो उनकी पूजा होगी। तो देवताएं भी बहुत जल्दी ऐसे, यहां जैसे हम सभी बाबा के बच्चे तीव्र प्रसाद करने के लिए कोई 2 बजे उठ जाते हैं, कोई 3 बजे उठ जाते हैं, लेकिन हमारा नियम तो सभी 3:30 बजे उठना ही है ना? नहीं, सारे वर्ल्ड में कहीं भी जाओ सभी ये नियम में पक्का कि 3:30 बजा तो बस अमृत वेला, शुद्ध पवन है मेरी लाड ले जागो, प्रभु मिलन की यही वेला है मेरी लाड ले जागो, सब उठ जाते हैं ना हम सभी 4 तो तैयार है एकदम, बिल्कुल है ना? नहीं, तो ये नियम देवताएं ऐसे बहुत जल्दी नहीं उठते होंगे, लेकिन भक्ति तो 5 बजे लोग शुरू करते हैं, उससे पहले तो तैयार होंगे ना, बहुत जल्दी नहीं लेकिन डेफिनेटली प्रातः जागरण करते हैं। और भक्ति भी देखिए द्वापर युग से लोग प्रातः काल से शुरू करते हैं, और आज तक भी मान्यता है। आज भी हमारे भारत में तो खास गायन है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। तो जल्दी सो के जो जल्दी उठता है वही बुद्धिवान बनता है, धनवान बनता है, स्वास्थ्यवान बनता है, आज तक मान्यता है। भले अभी सभी कमजोर होने के कारण पाश्चात्य सभ्यता को अंधानुकरण करते करते सब खाते लेट, उठते लेट, आज सबके लाइफ स्टाइल कैसे हो गया है हम देख रहे हैं, परंतु आज तक भी इसकी मान्यता है, ठीक है ना? नहीं, ऐसे ही हमारी और मूल सिद्धांत क्या है? पवित्र भोजन। हम इधर उधर खा सकते हैं? नहीं, शुद्ध सात्विक भोजन। तो देवताएं कभी अशुद्ध भोजन खाएंगे? क्योंकि देवताएं तो पक्के वैष्णव हैं, तो कैसे खाएंगे? और भक्ति में भी द्वापर युग में जब हम भक्ति भी शुरू किए, जो पक्के भगत हैं, आज तक भी मंदिरों में देखिए कभी भी अशुद्ध चीजों का वहां अर्पण नहीं होता है। सभी देवताओं की मूर्तियों को, जड़ मूर्तियों को कितने सुंदर स्वच्छता के साथ, कितने भावना के साथ, जो सच्चे पुजारी होते हैं, पक्के भगत होते हैं, वो तो भोजन किसी का हाथ का बना हुआ कभी अर्पण नहीं करेंगे। खुद ही शुद्ध पुत्र रूप में एकदम अपने मुंह में, जैसे हम मास्क पहनते हैं ऐसे कपड़ा बांध के, ताकि कभी कुछ बोलेंगे तो ड्रॉपलेट भी ना गिरे मुख के उस प्रसाद में, भोग में, और बिल्कुल मौन होके परमात्मा की स्मृति में रह के बनाते हैं, और किसके नजर भी, दृष्टि भी ना पड़े, इतना भी ध्यान देते हैं जो सच्चे भगत होते हैं। आज भी इसकी मान्यता है, श्रीनाथ द्वारे जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, बालाजी तिरुपति जाओ, सभी आज भी ऐसी मान्यता है। तो भक्ति में भी हम मानते थे, लेकिन धीरे 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 बाबा ने जैसे कहा, भक्ति सत्व प्रधान से तमो प्रधान हो गई, तो फिर हमारे भोजन भी अशुद्ध हो गया। लेकिन सच्चे भगत जो वैष्णव है, बिल्कुल अशुद्ध भोजन कभी नहीं करेंगे। ऐसे ही हमारी मान्यता है सत्संग, कुछ भी हो जाए हम बाबा की मुरली रोज सुनेंगे, ये हमारे जीवन की धारणा है, मुख्य सिद्धांत है। तो इसलिए देवताएं भी कोई कुसंग में नहीं होंगे, वहां भी सभी का जीवन श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ संग तो है ही है। लेकिन भक्ति काल में भी लोग सत्संग का कितना महत्व रखते हैं, जो सत्संगी होते हैं उनको बहुत अच्छा इंसान समझते हैं दुनिया में, बहुत लोग सत्संग करते रहते हैं। अभी ही ये पिछले एक दो दशक के अंदर ही सारा चेंज हो गया, भारत का कल्चर ही चेंज हो गया, लेकिन पहले अभी 30-40 साल पहले सबके गांव गांव में जहां देखो सत्संग की कोठियां होती थी, सभी जाके शाम को खा पी के जाके आराम से जाके सत्संग करते थे। सत्संग की महत्व अंतिम समय तक हम देख रहे हैं। तो ऐसे जीवन में हमारे जो मूल सिद्धांत है, ज्ञान के सिद्धांत, आप बहुत विचार सागर मंथन कर सकते हो। लेकिन मेरा ये सब कहने का तात्पर्य है कि बाबा हमें नशा चढ़ाने आए हैं, हमारे जीवन में सदा हम आनंदित कैसे रहें हमें सिखाने आए हैं। इसके लिए बाबा हमें भिन्न भिन्न समान बताते हैं। जैसे बताया बाबा ने, कहा आप कौन हो, भूल जाते हो, आप जानते तो हो लेकिन उसको मानकर अभी चलो। जैसे बाबा ने आज बोला, आप विधि विधाता हो, सिद्धि प्रदाता हो, तो आप स्वयं विधि पर चलते हो, उस सिद्धांतों को अपने जीवन में अनुकरण करते हुए, और दूसरों को विधि बताते हो, उनके जीवन में भी सिद्धि लाभ करना सिखाते हो। दुनिया वाले रिद्धि सिद्धि वो अलग है, दुनिया वाले बहुत महात्माएं हैं, कोई रिद्धि सिद्धि द्वारा चमत्कार दिखाते हैं, बहुत उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं, अल्पकालीन प्राप्ति है, सदाकाल की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि मनुष्य आत्मा अल्पज्ञ है। हमारी तो ईश्वरीय सिद्धि है, क्योंकि हम विधि पूर्वक जो ईश्वरीय विधि विधान है उसको सिखाते हैं और सिद्धि देते हैं। तो जैसे ईश्वर अविनाशी है, ऐसे बाबा हमें जो विधि बताते हैं उसकी सिद्धि भी अविनाशी है। इसलिए हम इसके प्रारब्ध 21 जन्म स्वयं प्राप्त करते हैं, और हमारे भगत भी अनेक जन्म तक वो भी उसकी प्राप्ति करते हैं, तो ये अविनाशी है। तो बाबा जो भिन्न भिन्न समान हमें दिलाते हैं, उस समान में रहना, उससे ही नशा चढ़ता है, खुशी होती है। हम योग में जब बैठते हैं, कईयों को नींद आती है, ऐसे नींद नहीं आएगी, लेकिन योग में बैठते ही झटका खाना शुरू हो जाता है, अनुभवी है हम सभी ना, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा योग अलग है, यहां कुछ मुख से तो बोलना नहीं है, कोई शोरगोर नहीं, बिल्कुल शांति से। तो आपको एक हंसी की बात सुनाता हूं, सत्य घटना है। एक सन्यासी हमारे हॉस्पिटल में आए थे और उनको मैं कोर्स कराया, तो पूरा बाबा के पक्के बच्चे बन गए। तो कुछ दिनों के बाद आके मुझे रेगुलर फिर मुरली सुनना शुरू किए, उनका ड्रेस भी चेंज कर दिए, उनकी दाढ़ी फाड़ी भी सब पूरा सेव करके पूरा पक्का ब्रह्मा कुमार बन गए। और आके एक दिन मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब, अमृत वेले जब योग में बैठते हैं नींद आती है, क्या करें? तो मैं उनको पूछा कि आप तो सन्यासी थे, आपको जल्दी उठने का आदत है, आपको क्यों नींद आती है? आपको तो आदत है ना। कहते हैं आप नहीं जानते हो, आप नहीं समझते हो, हम उठते थे लेकिन करते क्या थे? हम मृदंग लेकर, झांझ लेकर, हम खूब रड़िया मार मार के भजन गाते थे, जिसके कारण हमको नींद नहीं आती थी। यहां तो कहते हो कि आप चुप होके बैठो, चुप होके कितने समय बैठो, फिर नींद आ जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे एक साधारण व्यक्ति को बड़ा पोस्ट पोजीशन में बिठा दो तो उसका नशा चढ़ जाता है, मैं फलाना हूं, नशा चढ़ जाता है उसका, वो पोस्ट पोजीशन का नशा उसको चढ़ता है। ऐसे ही आप जब योग में बैठते हो, आप ऐसे ऊंचे ऊंचे समान रूपी सीट पर सेट हो जाओ। आप ऊंची समान रूपी सीट पर बैठते नहीं हो, साधारण स्थिति होती है, इसलिए तुम फिर नींद आ जाती है। तो जब भी हम योग में बैठते हैं, बाबा हमें विधि बताते हैं योग कैसे करें, ताकि हम योग में रमणीकता भी अनुभव करें। बाबा आज बाबा ने क्या कहा, ये ज्ञान बहुत रमणीक है, ये ज्ञान बहुत गोपनीय भी है, रमणीक भी है, इसमें बहुत मजा है। अगर ज्ञान को अच्छी रीति से कोई समझे ना, वास्तव में ये रूखा सूखा ज्ञान नहीं है, नशा चढ़ने वाला। ये ज्ञान को कोई अगर अच्छी तरह से समझेगा ना, उसको सदा ही नशा चढ़ा रहेगा, जो और सदा ही खुशी में नाचता रहेगा, वो ज्ञान डांस करता रहेगा। जिसके बुद्धि में ज्ञान के विचार सागर मंथन चलते रहते हैं, वो सदैव हर्षित रहेगा। मन में बहुत सुंदर विचार चलते रहेंगे तो सदैव आनंदित रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, खुश रहेगा। तो बाबा इसलिए कहते हैं बच्चे, सिर्फ सुनने सुनाने वाले नहीं, ये तो द्वापर युग से तुम सुनते आए हो, सुनने से कुछ नहीं होगा। अभी स्वयं ज्ञान का मनन करो, चिंतन करो, विचार सागर मंथन करो, तो आपको नशा चढ़ेगा, ईश्वरीय खजाना, अपना खजाना अनुभव होगा। तो इसलिए बाबा हमें समान रूपी सीट पर सेट होके भिन्न भिन्न चिंतन करने के लिए बाबा हमें सिखाते हैं, समान रूपी सीट पर सेट हो जाओ, फिर देखो आपको नशा चढ़ेगा, अनुभव होगा, आप योग रमणीक अनुभव करेंगे, मोनोटोनस नहीं होगा, रोज वही विधि नहीं, भिन्न भिन्न। ज्ञान तो इतनी रमणीक है, योग इतनी रमणीक है, आप सारी रात भी बैठेंगे, आप बहुत कुछ अनुभव कर सकते हैं। बाबा जो विधि हमें बताते हैं, वो विधि को अगर हम सचमुच फॉलो करें तो बहुत मजा आएगा, बहुत नशा चढ़ेगा। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताया। देखो, योग में खाली बैठ जाना उसको योग नहीं कहा जाता है। योग अर्थात परमात्मा प्रेम में गदगद हो जाना, आनंद विभोर हो जाना, देवान सुदबुद्ध बिल्कुल भूल जाए, रोमांच हो जाए, एकदम गदगद होके आनंदाश्रु झरझर निकले, तब कहेंगे योग। लगन में मगन हो जाना तब कहेंगे योग। ऐसा अनुभव होगा तो किसको नींद आएगी? हमारा चिंतन ही नहीं चलता है, हम सीट पर बैठते नहीं हैं, साधारण स्थिति में स्थित होते हैं, तो कहां से नशा चढ़ेगा, कहां से आनंद अनुभव करेंगे? योग में वास्तव में हमें आनंदित अनुभव होना चाहिए, एकदम आनंद गदगद हो जाना चाहिए। इसलिए तो भक्ति में भी जो योगी होते हैं, देखना वो अपना नाम को चेंज करके आनंद शब्द से जुड़ देते हैं, चिदानंद, शिवानंद, दयानंद, विवेकानंद, तो आनंद शब्द से जुड़ देते हैं। तो बाबा भी हमें सच्चा योगी, राजयोगी बनाने हैं, राजा भी हैं हम, योगी भी हैं, तो नशा चढ़ना चाहिए, आनंद अनुभव होना चाहिए। योग में अगर हमें खुशी, नशा, शक्ति, आनंद अनुभव नहीं हो रहा है, तो हमारी विधि ठीक नहीं है, फिर हम दूसरों को क्या सिखाएंगे? बाबा कहते खुद विधि द्वारा स्वयं ही अनुभव करो और दूसरों को विधि सिखाओ, ताकि वो भी अनुभव करें। तो विधि आज बाबा ने कितनी सुंदर बताया। देखो, आप जब बैठते हो सुंदर सुंदर अनुभव करो, खाली मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो उसमें फिर नशा नहीं चढ़ता है। कौन सी आत्मा हूं? बाबा कहते कभी सोचो, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं, शिव शक्ति हूं, जैसे मेरे बाबा सूर्य समान है, एक लाइट हाउस माइट हाउस है, बाबा के साथ साथ मैं भी कंबाइंड हूं, जैसे बाबा एक चमकता हुआ सितारा, बाबा के साथ साथ मैं भी एक चमकता हुआ सितारा, जैसे बाबा में अथाह शक्ति है, बाबा चारों तरफ शांति, शक्ति, पवित्रता की किरणें बिखर रहे हैं बाबा से, ऐसे ही मैं भी बाबा के साथ साथ सारे विश्व में अथाह शांति, शक्ति, प्रकाश, प्रेम, पवित्रता की किरणें फैला रहा हूं, अनुभव करो, बैठ जाओ। तो जब योग करते हैं खाली सोचना नहीं है, बुद्धि रूपी नेत्र द्वारा हमें उसको विजुअलाइज भी करना है और मन द्वारा संकल्प भी संरचना करना है। दोनों साथ साथ जब होगा तो नींद नहीं आएगी। बुद्धि द्वारा अनुभव करें, देखें परम धाम हमारा ऐसा होगा, इतना सुंदर चारों तरफ सुनहरी लालिमा, अखंड ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व, चारों तरफ प्रशांति ही प्रशांति है, एकदम शक्तिशाली वातावरण प्रकाशित है और वहां बाबा चमक रहे हैं एक लाइट और माइट के रूप में। मैं भी बाबा के एकदम सन्मुख गया, नजदीक गया, एकदम बाबा के साथ एकाकार हो गया, बाबा के साथ कंबाइंड हो गया, मैं भी मास्टर सूर्य समान हूं और बाबा के साथ साथ चारों तरफ लाइट और माइट फैला रहा हूं। और वो लाइट और माइट, वो शांति, शक्ति, पवित्रता की किरणें उतर उतर कर सारे विश्व में छा रहे हैं। अनुभव करो ऐसा, तो फिर नींद कहां से आएगी? बाबा कहते हैं अनुभव करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बहुत एकदम शक्तिशाली एक लाइट हाउस हूं, एक माइट हाउस हूं। जो अपने आप को ऐसे शक्तिशाली अनुभव करेगा उसको नींद आएगी? बाबा कहते हैं कभी फरिश्ता अनुभव करो, मेरा शरीर एक प्रकाश के काया, सुंदर काया है, मेरे मस्तक के चौं और एक सुंदर पवित्रता का प्रभाव मंडल है, उमंग उत्साह और ज्ञान योग रूपी दो सुंदर पंखों से सुशोभित मैं बिल्कुल प्रकाश की काया में लाइट ही लाइट हूं। मैं प्रभु संदेश वाहक हूं, मेरा एक ही रास्ता, एक ही रिश्ता, बस यह फर्श की दुनिया से बहुत ऊपर मैं अर्श निवासी हूं। ऐसे विजुलाइज कीजिए मेरा स्वरूप कैसा होगा, ऐसा सुंदर, इतना हल्का, इतना लाइट, दुनिया के सभी प्रकार के बंधनों से, झंझटों से मुक्त, बिल्कुल स्वतंत्र, बिल्कुल हल्का। ऐसे बाबा भिन्न भिन्न जो स्वरूप का सुमान हमें देते हैं, जब इसको हम प्रैक्टिकली जब योग में बैठते हैं, उस सुमान रूपी सीट पर बैठकर ऐसा अनुभव करते हुए चिंतन करें और बाबा के साथ रुरुहान करें, तो नशा ऑटोमेटिकली चढ़ेगा, खुशी होगी, आनंद अनुभव होगा। और सारे दिन में भी, क्योंकि हमारा योग तो निरंतर योग है, कर्म योग है, कर्म करते समय भी फरिश्ता अनुभव कर सकते हैं, ऊंचे ऊंचे सोमान में स्थित हो सकते हैं, तो बाबा सारे दिन में भिन्न भिन्न ऐसे सोमान को अभ्यास करने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि हम निरंतर योगी बने, भगवान आए हैं एक पल भी विस्मृत ना हो, क्योंकि भूला तो लगा माया का गोला। इसलिए बाबा कहते तस्मात सर्वेशु कालेषु योगिर भवार्जुन, हे अर्जुन तू निरंतर योगी बन जा, योगस्थ कुरु कर्माणि, तो कर्म करते समय भी योग। तो हम सुमान लिखें, भिन्न भिन्न सुमान, और ज्ञान के सिद्धांतों को लिखें और उसको चिंतन करें, मनन करें। आज बाबा ने विशेष ये दो बातें मुरली में अगर सुनेंगे तो हम ज्ञान के सिद्धांतों को चिंतन करके वो विधि को लोगों तक पहुंचाएं, उनको भी वो विधि में कैसे पुरुषार्थ करें सिखाएं, और दूसरा हम भिन्न भिन्न सोमान रूपी सीट पर सेट होकर बाबा के साथ मिलन मनाएं, सारा दिन में इसके सोमान का अभ्यास करें, ताकि खुद ही आनंद विभोर हो जाए, इसके प्रारब्ध खुद को भी मिलेगा और दूसरों को भी हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है ना? नहीं, बहुत अच्छा, करें सभी अभ्यास। बाबा सुप्रीम टीचर हैं हमारे, बाबा जो होमवर्क देते हैं, जो करता है फिर तो बाबा के दिल पर वो चढ़ जाएगा, है ना? नहीं, तो हम बाबा के प्यारे बने, बाबा के आस को पूर्ण करें, यही सबके लिए सुभावना है। ओम शांति।